हरे कृष्ण, आपका प्रश्न है कि श्रद्धा का क्या अर्थ है? क्या हम किसी भी देवी देवता में श्रद्धा रखकर उनकी पूजा करते हैं तो वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं? अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 17 में देते हैं। इस चैप्टर का नाम ही है श्रद्धा त्रिय विभाग, के श्रद्धा के विभाग। जब चैप्टर नंबर 16 का एंड होता है, उसके श्लोक नंबर 23 में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्रिज्य वर्तति कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अर्थात जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, वर्तते काम कारणात, और अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख, और ना ही परम गति प्राप्त होती है। यानी कि शास्त्रों का आदेश अगर कोई नहीं मानता है, अपने मन माने ढंग से कार्य करता है, तो उससे न सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख, न जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त होगा। भले ही भौतिक लिहाज से वो अपने आप को संपन्न मानता है, लेकिन भौतिक में क्या आपके शरीर को ही सुख मिलेगा? अगर कोई देवी देवताओं का उपासक होता है तो उसे क्या प्राप्त होगा? देवी देवताओं के द्वारा आपको भौतिक सुख मिल सकते हैं, अधिक से अधिक परिश्रम उनकी भक्ति करेंगे तो क्या स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 9.21 में, क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, दोबारा से इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। सबसे बड़े जो देवता हैं ब्रह्मदेव, उनका जो सत्य लोक है वहां पर जीव की आयु बहुत बड़ी होती है, लेकिन भगवान कहते हैं 8.16 में, आब्रह्म भुवनाल लोका पुनर्आवृति नो अर्जुन मामुपेत कौन्तेय पुनर्ब्रह्म पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब किसी भी देवी देवता की भक्ति करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते। इसे भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 17 के पहले श्लोक में कहते हैं, श्रद्धा के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजतमः। अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, शास्त्र का नियम क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होया। शास्त्र कहता है कि आपने यदि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो सर्व कर्म कृत हो, सारे काम हो गए, आपको किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं 10.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम श्रम रजा, आप सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, अब जिसकी भी वो पूजा करते हैं वो बहुत ही श्रद्धा से करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सत्त्वमाहो रजतम, वो सत्व गुण में कर रहे हैं, रजोगुण में कर रहे हैं या तमोगुण में कर रहे हैं? तो भगवान बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 2 में। भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। देखो अर्जुन, देहदारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। यानी कि आप जब तक इन 3 गुणों से ऊपर नहीं उठते हो, तब तक तो आप जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बच सकते हो। अब जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए आपको शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, और शुद्ध सत्व में रहकर हम केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। लेकिन अगर किसी और की भक्ति करते हैं तो हम या तो सत्व गुण में हैं, या तो रजोगुण में हैं, या फिर तमोगुण में हैं। और कौन से गुण में व्यक्ति किसकी सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 17.4 में। भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा भूतान् प्रेतान् भूतगणास्यन्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात यजन्ते सात्विकान् देवान्, जो सत्वगुण में होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, यानी जैसे या तो शिव जी की पूजा करते हैं या फिर ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, चंद्र वरुण इत्यादि, झूलेलाल की पूजा करते हैं, या फिर दूसरे दूसरे गणपति और बहुत सारे देवी देवता है ना, उनकी पूजा करते। कौन? भगवान के शब्द हैं, गौर से सुनो। यजन्ते सात्विका देवान्, जो सात्विकी लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और यक्ष रक्षांसि राजसान्, जो रजोगुण में होते हैं वे यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इनके द्वारा हमें प्राप्त हो बहुत सारी चीजें, उनको प्राप्त। अब वास्तव में वो सात्विक होते हैं, इसलिए वो सत्वगुण में देवताओं की पूजा करते हैं। सत्वगुण में भी देवताओं की पूजा करके वो प्राप्त ही करना चाह रहे हैं ना, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना। रजोगुण उनके अंदर होता है, लेकिन वो पूजा देवताओं की कर रहे हैं, इसलिए सत्वगुण के स्तर पे होते हैं। वास्तव में आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं ना, ये तो या तो रजोगुण में है या तमोगुण में है। वो कैसे है? जैसे तमोगुण का मतलब होता है मोह, गुमराही, या फिर मतलब जहालत, अज्ञानता। अब आप अज्ञानता क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, अज्ञानता ये है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की यदि भक्ति करते हो तो वो शुद्ध सत्व है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आप तमोगुण में हो। लेकिन तमोगुण की स्थिति में भी अगर आप देवताओं की पूजा करते हो तो सत्वगुण वो स्टेज आ जाती है, अगर रक्षों और राक्षसों की पूजा करते हो तो रजोगुण, और उससे भी ज्यादा अगर तमोगुण की स्थिति में आ जाते तो भगवान कहते हैं कि प्रेतान भूत गणाश्चैवा, के भूत प्रेतों की पूजा करते हैं जो तमोगुण में होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक भागवतम का श्लोक सुनाना चाहूंगी, चौथा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति विशुद्ध सत्व में आ जाता है, यानी सत्वगुण से भी ऊपर स्टेज पर पहुंचता है, तो वह वसुदेव भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त होते हैं, वे ही भगवान की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने श्रद्धा के विभिन्न प्रकार बताए कि श्रद्धा के अनुसार आप जिसकी भी पूजा करते हो उसके अनुसार आपको रिजल्ट भी मिलता है। जिसकी भी आप पूजा करते हो, जैसे आप देवताओं की पूजा करते हो तो देवताओं की पूजा के द्वारा आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यक्षों राक्षसों से भी जो 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 कामनाएं होती हैं उनके अनुसार, भूत प्रेतों से किसी का हानि करवाते हैं और ये इस तरह के कार्य करते हैं आत्मा। बाद में क्या होता है कि वही फिर बाद में हमारे लिए हानिकारक बन जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इतना संतुष्ट होते हैं क्योंकि तमोगुण में होते हैं तो उनकी पूजा करके वो बहुत संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये जितना जितना आपके अंदर ज्ञान होता जाएगा ना, ज्ञान का प्रकाश, उस तरह से आप क्या करोगे, अपने गुण को दूसरे गुण में परिवर्तित करोगे। लेकिन जिस तरह जितना जितना आप ज्ञान अर्जित नहीं करोगे, शास्त्र को अध्ययन नहीं करोगे, भक्तों का संग नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो फिर आप तमोगुण से ऊपर नहीं उठ सकोगे। आजकल लोगों ने अपनी श्रद्धा को इतना घटिया बना दिया है कि उनको पता भी नहीं होता है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं कि वो वास्तव में वाकई में वो इस लायक है कि हम उसकी भक्ति करें, अन्यथा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, आपको श्रद्धा के विषय में बहुत ही सुंदर समझ में आएगा। एक व्यक्ति था, वो धोबी था, वो बहुत ज्यादा गरीब था और वो एक मजार पे जाता था। रोजाना कपड़े धोता था और लोगों को पहुंचाने से पहले वो एक मजार पे जाता था, और जो भी कपड़ों में से उसको मिलता था उसका कुछ ना कुछ दान रख के जाता था उस मजार पर, कब्र पे रख के जाता था। और उसको बहुत ऐसा लगता था कि उसकी वजह से मेरा धंधा सही चल रहा है, काम कारोबार सही चल रहा है, और बहुत श्रद्धा थी उस कब्र के ऊपर, कब्र की उसके ऊपर। तो फिर उसने एक बार, वो रोजाना धोबी जो है वो ऐसे हाथ से कपड़े लेकर जा रहा था तो बहुत थका हुआ होता था। एक बार जो मजार है ना उसके बाहर जो बैठा होता है ना पुजारी उसका, वो बैठा हुआ था तो उसने उससे पूछा तुम इतने दुखी हो? तो बोला हाँ मैं धोबी हूँ और मेरे पास कोई सवारी भी नहीं है, मैं कपड़े वपड़े उठा के लेके जाता हूँ तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं इस मजार पे आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ पर, बहुत श्रद्धा है मेरी इसके ऊपर, तो फिर है ना मैं यहाँ पर आता हूँ सुकून मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काश ये मेरी सुन ले और मुझे कोई ऐसी चीज दे दें गड्ढा और इस तरह जिसपे मैं कपड़े लाद के लेके जाऊं। तो फिर उस पुजारी ने कहा कि तुम समझो कि बाबा ने तुम्हारी सुन ली। तो बोला क्या? बोला हाँ मैं आपको एक गड्ढा देता हूँ, आप इसको ले जाओ और इसके ऊपर चढ़ के आप है ना कपड़े लेकर जाना, आपको ईजी लगेगा बहुत। तो वो उसको लेकर गया और इतना खुश हो गया, अब तो उसका जो विश्वास था वो इतना ज्यादा पक्का हो गया कि देखो मैंने जिस चीज की ख्वाहिश की वो मुझे प्राप्त हो गई। तो फिर अब उसने सारे दोस्तों को सबको बताया कि ये मजार वाला बाबा जो आपकी इच्छा आप करते हो वो पूरी हो जाती है, इतना इतना खुश था, बहुत खुश था। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से रोजाना कपड़े वपड़े पहुंचा के फिर रोज उसका रूटीन था कि वहां पर उस कब्र पे आता था प्रणाम करने के लिए। एक बार क्या हुआ, उसका घोड़ा बीमार हो गया, उसने बहुत मतलब उसको दवाई ववाई पिलाई लेकिन फिर भी वो मर गया। वो मर गया तो बहुत दुखी हुआ। धोबी ने सोचा कि देखो मुझ पर कितनी कृपा की मजार वाले बाबा ने, मुझे गधा दिया लेकिन मैं इस लायक नहीं था, मैंने उसके उसको संभाल नहीं सका, उसकी कब्र बनाई और कब्र के ऊपर है ना बहुत अच्छे से पानी वानी डाला और वहां पर बैठ के रो रहा है रो रहा है रो रहा है, इतना रो रहा था उससे आंसू ही नहीं थम रहे थे। तो वो कब्र के बराबर में एक हॉस्पिटल थी, वहां से एक माता जी आई और देखा कि ये रो रहा था तो वो भी आके प्रणाम करने लगी उस कब्र के ऊपर और कहने लगी कि हे बाबा मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है, आप कृपा करके कृपा करना कि उसका ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। बहुत सारी दुआएं प्रार्थनाएं करके वो गई हॉस्पिटल और फिर उसकी बेटी का ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया। वो बहुत खुश हुई और आके बोला इतना खतरनाक ऑपरेशन था, डॉक्टर ने बोला था कि है ना सिर्फ 50% चांसेस हैं लेकिन बाबा आपने मेरी सुन ली। बहुत खुश हुई, चादरें लेकर आई, फ्लावर्स लेकर आई और उनको डेकोरेट किया, वहाँ पर पैसे वैसे रखे और जितने भी उसके खानदान वाले हैं ना उनको सबको लेकर आई, वहाँ पर भोजन वोजन सबको खिलाया, प्रसाद सबको वितरण किया और इतना फेमस हो गई ये जगह, सब उनके सारे रिश्तेदार थे जिस जो भी हॉस्पिटल में जाता था, जो भी कुछ किसी मतलब उनके कारण में अगर किसी को हॉस्पिटल में जाना होता था, किसी का पेपर होता था, किसी का विवाह होता था, किसी का बच्चा पैदा होता था, सब इधर आते थे, चादर चढ़ाते थे और पैसे रखते थे। वो गधे वाला जो आदमी था ना धोबी, वो इतना खुश था, इतना खुश था, बोला ये बाबा का मजार जो है वो कितना ज्यादा बरकत वाला था, कितनी इसकी हमारे ऊपर कृपा है, जब तक इसने जो गधा दिया था जब तक जिंदा था तब तक मैं उसके कारण जीता था और अब मर गया है तो उसी के कारण देखो मुझे कितना सारा धन मिल रहा है। फिर वो सोच रहा था कि आज मैं वापस से उस बाबा के पास जाता हूँ उसे थैंक्स कहने के लिए। और वो गया, बाहर बाबा बैठे हुए थे, बोला बाबा मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने जो मुझे गधा दिया था वो जीते जीते तो मेरी सेवा करता था, आज मर गया है तो भी मैं हजारों रुपए उसकी कृपा से कमा रहा हूँ, तो आपका ये जो मजार वाला बाबा है ना वो वाकई में बहुत करामत वाला है, बहुत ज्यादा इसके अंदर करिश्मा है। तो बोला जानते हो ये कौन है? तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता। बोला ये उसी गधे की माँ की कब्र है जो मैंने तुमको दिया था, ये उसकी माँ की कब्र है जो तुम रोजाना रोजाना आके अपना सारा 50% अमाउंट मुझे देके जाते थे ना, ये उसी गधे की माँ की कब्र है, यानी गधे की कब्र है। तो मतलब आज की श्रद्धा जो है हमारी वो इतनी निकृष हो गई है, ना शास्त्र का कोई प्रमाण होता है, ना कोई वैष्णवों का प्रमाण होता है, हम बस किसी को भी चुन लेते हैं कि बस किसी तरह से हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, फिर चाहे गधे को ही क्यों ना बाप बनाना पड़े। ऐसा नहीं है, लोग जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग हैं, उनको भगवान करके पूजते हैं, कुछ नेताओं को भगवान करके पूजा जाता है, ये लेकिन श्रद्धा होती है, कोई किसी देवी देवता को भी पूछता है तो पूरी श्रद्धा के साथ उसको बहुत, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आपने यदि किसी गधे को श्रद्धा से भगवान बनाया तो वो भगवान बन जाएगा। श्रद्धा का मतलब, वास्तविक मतलब ये है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक का मतलब होता है सत्य, श्रद्ध का मतलब होता है सत्य, धा का मतलब होता है धारण करने वाला, जो सत्य को धारण करता है यानी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसका मतलब श्रद्धा है। किसी गधे के ऊपर श्रद्धा रखते हो या किसी नॉन लिविंग दूसरी किसी जीव जंतु भूत प्रेत पर अगर श्रद्धा रखते हो तो वो श्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास समझते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट, जिसका ना कोई शास्त्रों का आधार है और ना ही कोई प्रमाण है, आप उसको कैसे भगवान मान सकते हो। भले आपके अंदर कितनी श्रद्धा है लेकिन यदि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो आप कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूट सकते। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, आपके अंदर पूरा निश्चय होना चाहिए किस बात पर, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत्त है, केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही आपके सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं। अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं कृष्ण की भक्ति करती हूँ लेकिन मुझे ये वस्तु तो मिली नहीं मिली, तो इसी में तुम्हारी भलाई है। जो भी हो रहा है कृष्ण की भक्ति करके आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। आप कृष्ण की भक्ति करके आप क्या चाहोगे, भगवान आप कृपा करो तो जो भी मिला है वो भी कृष्ण की कृपा है और जो नहीं मिला है वो भी कृष्ण की कृपा है। यदि इस बात पर श्रद्धा हो जाती है, इस बात पर पक्का विश्वास हो जाता है तो ये है वास्तविक श्रद्धा। हरे कृष्ण।